आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। सुनो कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी कला।
हिंदी को इंटरनेट की भाषा बनाने और कला की हर विधा से जोड़ने का हमने उठाया है बीड़ा। क्या आप हैं हमारे साथ? आज ही लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग, युवा उम्मीदों और प्रतिभाओं का हिंदुस्तानी मंच।
उसके पिता ने बड़े दुलार से उसका नाम रखा था कला। नवीन इंदु कलासी वह आलोकमयी और आंखों की प्यास बुझाने वाली थी। विद्यालय में सबकी दृष्टि उस सरल बालिका की ओर घूम जाती थी, परंतु रूपनाथ और रसदेव उसके विशेष भक्त थे। कला भी कभी कभी उन्हीं दोनों से बोलती थी, अन्यथा वो एक सुंदर नीरवता ही बनी रहती थी। तीनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, फिर भी उनमें डाह थी। वे एक दूसरे को अधिकाधिक अपनी ओर आकर्षित देखना चाहते थे। छात्रावास में और बालकों से उनका सौहार्द नहीं था। दूसरे बालक और बालिकाएं आपस में इन तीनों की चर्चा करती। कोई कहता, कला तो इधर आंख उठाकर देखती भी नहीं। दूसरा कहता, रूपनाथ तो सुंदर है किंतु है कितना कठोर। तीसरा कहता, अरे रसदेव तो पागल है, उसके भीतर न जाने कितनी हलचल है। उसकी आंखों में निश्चल अनुराग है, पर कला को जैसे सबसे अधिक प्यार करता है। उन तीनों को इधर ध्यान देने का अवकाश नहीं। वे छात्रावास की फुलवारी में अपनी धुन में मस्त विचरते थे। सामने गुलाब के फूल पर एक नीली तितली बैठी थी। कला उधर देखकर गुनगुना रही थी। उसकी सजन स्वर लहरी अवगुंठित हो रही थी। पतले पतले अधरों से बना हुआ छोटे से मुंह का अवगुंठन उसे ढकने में असमर्थ था। रूप एकटक देख रहा था और रस नीले आकाश में आंखें गड़ाकर उस गुंजार की मधुर श्रुति में कांप रहा था। रूप ने कहा, आह कला, जब तुम गुनगुनाने लगती हो तब तुम्हारे अधरों में कितनी लहरें खेलती हैं, भवें जैसे अभिव्यक्ति के मंच पर चढ़ती उतरती कितनी अमिट रेखाएं हृदय पर बना देती हैं। रूप की बातें सुनकर कला ने गुनगुनाना बंद कर दिया। रस ने व्याघात समझकर भ्रूभंग सहित उसकी ओर देखा। कला ने कहा, अब मैं घर जाऊंगी, मेरी शिक्षा समाप्त हो चुकी। दोनों लुट गए। रूप ने कहा, मैं तुम्हारा चित्र बनाकर उसकी पूजा करूंगा। रस ने कहा, भला मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूं। कला चली गई। एक दिन वसंत के गुलाब खिले थे। सुरभि से छात्रावास का उद्यान भर रहा था। रूपनाथ और रसदेव बैठे हुए कला की बातें कर रहे थे। रूपनाथ ने कहा, उसका रूप कितना सुंदर है। रसदेव ने कहा, और उसके हृदय के सौंदर्य का तो तुम्हें ध्यान ही नहीं। हृदय का सौंदर्य ही तो आकृति ग्रहण करता है, तभी मनोहरता रूप में आती है, परंतु कभी हृदय की अवस्था आकृति से नहीं खुलती, आंखें धोखा खाती हैं।
मैं रूप से हृदय की गहराई नाप लूंगा रसदेव। तुम जानते हो कि मैं रेखा विज्ञान में कुशल हूं। मैं चित्र बनाकर उसे जब चाहूंगा प्रत्यक्ष कर लूंगा। उसका वियोग मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
आह रूपनाथ, तुम्हारी आकांक्षा साधन सापेक्ष है। भीतर की वस्तु को बाहर लाकर संसार की दूषित वायु से उसे नष्ट होने के लिए।
चुप रहो तुम, मन ही मन गुनगुनाया करो। कुछ है भी तुम्हारे हृदय में? कुछ खोलकर कहकर दिखला सकते हो? कहकर रूपनाथ उठकर जाने लगा। शुभ्ध होकर उसका कंधा पीछे से पकड़कर रसदेव ने कहा,
तो मैं उसकी उपासना करने में असमर्थ हूं क्या?
रूपनाथ अवहेलना में देखता हुआ मुस्कराता चला गया। काल के विश्रृंखल पवन ने उन तीनों को जगत के अंचल पर बिखेर दिया, पर वे सदैव एक दूसरे को स्मरण करते रहे। रूपनाथ एक चतुर चित्रकार बन गया। केवल कला का चित्र बनाने के लिए उसने अपने अभ्यास को और भी प्रखर कर लिया। वह अपनी प्रेम छवि की पूजा के नित्य नए उपकरण जुटाता। वह पवन के थपेड़े में मुंह फेरे हुए फूलों का श्रृंगार चित्रपटी के जंगलों को देता। उसकी तूलिका से जड़ होकर भीतरी आंदोलन से बाह्य दृश्य अनेक सुंदर आकृतियों की विकृतियों में स्थायी बना दिए जाते। उसकी बड़ी ख्याति थी, फिर भी उसका गर्वस्फीत सिर अपनी चित्रशाला में आकर न जाने क्यों नीचे झुक जाता था। वह अपने अभाव को जानता था, पर किसी से कहता न था। वह आज भी कला का अपने मनोनुकूल चित्र नहीं बना पाया था। रसदेव का जीवन नीरव निकुंजों में बीत रहा था। वह चुपचाप रहता, नदी तट पर बैठे हुए उस पार की हरियाली देखते देखते अंधकार का पर्दा खींच लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। और नक्षत्रमाला सुशोभित गगन के नीचे अवाक निस्पंद पड़े हुए सकुतूहल आंखों से जिज्ञासा करती रात्रिचर्या। कुछ संगीतों की असंगति और कुछ अस्पष्ट छाया उसके हृदय की निधि थी, पर लोग उसे निकम्मा, पागल और आलसी कहते। एकाएक रजनी में सरिता कलोल करती हुई बही जा रही थी। रसदेव ने कल्पना के नेत्रों से देखा। अकस्मात नदी का जल स्थिर हो गया और अपने मरकत मृणाल पर एक सहस्रदल मणिपद्म जलतल के ऊपर आकर नैश पवन में झूमने लगा। लहरों में स्वर के उपकरण से मूर्ति बनी, फिर नूपुरों की झनकार होने लगी। धीर मंथर गति से तरल आस्तरण पर पैर रखते हुए एक छवि आकर उस कमल पर बैठ गई। रसदेव बड़बड़ा उठा। वह काली रजनी वाले दुष्ट दिनों की दुख गाथा और आज की वैभवशालिनी निशा की सुख कथा मिलाकर कुछ कहने लगा। वह छवि सुनती सुनती मुस्कराने लगी, फिर चली गई। नूपुरों की मधुर मधुर ध्वनि अपने संगीत का आधार उसे देती गई। विश्व का रूप रसमय हो गया, आकृतियों का आवरण हट गया। रसदेव की आंखें पारदर्शी हो गईं। आज रसदेव के हृदय की अव्यक्त ध्वनि सार्थक हो गई थी। वह कोमल पदावली गाने लगा। नगर में आज बड़ी धूमधाम है, जिसे देखो रंगशाला की ओर दौड़ा जा रहा है। रंगशाला के विशिष्ट मंच पर संपन्न चित्रकार रूपनाथ ठाट बाट से बैठा है। धनी, शिक्षित और अधिकारी लोग अपने आसनों पर जमे हैं। वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ अभिनेत्री ने यवनिका उठते ही पदार्पण किया। नूपुर की झनकार की लहर ठहर ठहर कर उठने लगी। उंगली और कलाई, कटी और बाहुमूल स्वर की मरोर से बल खा रहे थे। लोगों ने कहा, देखने की वस्तु आज ही दिखलाई पड़ी। जीवन का सबसे बड़ा लाभ आज ही मिला है। कितने सहृदय अपने उछलते हुए हृदय को हाथों से दबाए थे। शालीनता उनके लिए विपत्ति बन गई थी। चित्रकार का अंध भक्त धन कुबेर भी पास ही बैठा था। उसने कहा, रूपनाथ, इसका एक सुंदर चित्र बनाकर मुझे दे सकोगे क्या? चित्रकार ने देखा एक अतुलनीय छवि राशि। तुलिका इसके समीप पहुंच सकेगी? वह आंखों में अंकित करने लगा। सहसा अभिनेत्री के अधर खुल पड़े। नृत्य श्वास, श्लथ प्रश्वास क्षण भर के लिए रुके। बांसुरी बज उठी। वागेश्वरी के स्वरों के कंपन की लहरें ज्योति सी बिखरने लगी। चित्रकार पुकार उठा, कला? परंतु यह क्या? उसने देखा, कला सजीव चित्र थी। उसकी पूर्णता स्वर कंपन के ज्योति मंडल में ओतप्रोत थी। उसने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, मैं असफल हूं, मैं इस भाव को रूप नहीं दे सकूंगा। वह उठकर चला गया। कंगाल रसदेव भी पीछे के मंच पर अपने एक साथी के साथ बैठा था। उसने कहा, रसदेव, यह तो तुम्हारी बनाई हुई स्मृति नाम की कविता गा रही है। तुम्हारी रसमयी भावुकता ही इस स्वर्गीय संगीत का केंद्र है, आत्मा है, जैसे वर्णमाला पहनकर आलोक शिखा नृत्य कर रही है। संगीत में उस समय विश्राम था। अभिनेत्री ने वीणा और मृदंग को संकेत से रोककर मूल अभिनय आरंभ कर दिया था। अपने झलमले आंचल को माया जाल के समान फैलाकर स्मृति की प्रत्यक्ष अनुभूति बन रही थी। कवि की मधुर वाणी उसे सुनाई पड़ी। कवि रसदेव ने अपने साथी से हंसते हुए कहा, इसकी अंतिम और मुख्य पदावली ये भूल गई। उसका अर्थ है, मेरी भूल ही तेरा रहस्य है, इसलिए कितनी ही कल्पनाओं में तुझे खोजता हूँ, देखता हूँ, हे मेरे चिर सुंदर। वह स्मृति से जैसे जग पड़ी। उसने उस कहने वाले को खोजा और अपने बधाई के फूल विजयमाला उस दूर खड़े कंगाल कवि के चरणों में श्रद्धांजलि के सदृश बिखेरने चाहे। रसदेव ने गर्वस्फीत सर झुका दिया। धन्यवाद।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।